में वराइहिम जहन्नम, उनके आगे जहन्नम है, यानी ये जिस रास्ते पे जा रहे हैं आगे जहन्नम है इनके लिए, और पीछे भी के लिए भी वरा आता है, वरे, तो पीछे जहन्नम है यानी जहन्नम इनका ताकुब कर रही है, इनके पीछे है। अल्लाह ताला तो अहाता किया हुआ है, अल्लाहु मुहैतुम बिल काफिरीन, ये बच के कहाँ जाएंगे। इसलिए यहां पे बताया गया कि ये जो ऐसे लोग हैं जहन्नुम से बेखबर, यहाँ पे हंसी उड़ाने लगे हुए, लेकिन जहन्नुम इनकी ताक में, इनके लिए तैयार है। तब क्या होगा, अला युगनी अनहुम मा कसबू शैअन, इनको नई काम आएगी जो भी इन्होंने कमाया, यानी इस दुनिया में जितना कुछ भी कमा लिया, ये नहीं कि नेकियां, नेकियां नहीं यहाँ पे मुराद है, जितना कुछ भी कमाया, बड़ी शोहरत कमा ली, मेरे बड़े फॉलोइंग है, मेरे बड़ी आगे पीछे लोग होते हैं, मेरी बड़ी पोजीशन है, बड़ा मकाम है, बड़ी जायदादें हैं, बड़े बैंक बैलेंस हैं, बड़ी डिग्रियां हैं मेरे पास, बड़ी जॉब है मेरे पास, कुछ भी इनको काम नहीं आएगा। इनके आम ये आमाल, इनकी ये कमाई इनका बचा नहीं सकेगी, और ना कौन बचा सकेगा। यहाँ तो इंसान को इन चीजों के ऊपर बड़ा ही मान होता है कि मेरे पास ये सब कुछ है, मुझे कौन सा कुछ प्रॉब्लम है, और दूसरा उसको अपने कॉन्टेक्ट्स पे बड़ा होता है। तो वो भी कहा गया वाला, और ना मत्तखदू मिन दूनी लाही औलिया, जिनको उसने अपना मददगार बनाया हुआ था अल्लाह के सिवा, यानी बड़े प्रोटेक्टर है मेरे, मेरे बड़े सपोर्टर्स हैं मेरे, औलिया में सारे आते हैं, सरपरस्त, मददगार, दोस्त, ये भी काम ना आएंगे। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, तो देखिए अज़ाबुन अलीम भी कहा गया, अज़ाबुन मुहीन भी कहा गया, अज़ाबुन अज़ीम भी कहा गया उनके लिए, कितना अल्लाह ताला का गजब है ऐसे लोगों के ऊपर। वो कौन लोग हैं, अल्लाह की आयात के आगे तकबर करने वाले, इसरार करने वाले, वो उनको पता चल गया है फिर भी अड़े में, बस मैं ना मानू, मैंने नहीं मान के देना, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना उनके पास, कुछ तो कहते होंगे, उस सिवाय तकबुर के और कुछ नहीं है, ठीक है। और जो मजाक उड़ाते हैं अल्लाह ताला की आयात को, जो हक है, सच्चाई है इनके अंदर, उन बातों को इन्होंने मजाक का निशाना बनाया हुआ, ये समझते हैं बड़ा डर है, समझते हैं बहुत बड़ा कुछ है हमारे पास, कुछ नहीं होता हमें, नहीं, उनके लिए तो बड़ा अजाब है। अल्लाह अकबर, हादा हुदन, ये हिदायत है, ये हिदायत का पैगाम है, कुरान जो है ना ये सरासर रहनुमाई है, इसलिए है कि हिदा, इसका मकसद यानी क्या है, हिदायत देना, ये कोई मजाक की चीज नहीं है, बहुत सीरियस चीज है। आजकल तो हमारा ये हाल हो गया कि हम स्पीकर भी उसको सुनना चाहते हैं जो मजाक करे, इतना मजाक का फैशन हो गया, यानी जो स्टेज पे हंसाए ना खड़ा होके, हंसाना जरूरी है, कोई लतीफे कोई चुटकुले भी छोड़ता जाए तो फिर हमारा दिल बड़ा लगता है, लेकिन कोई हिदायत की बात करे, सीरियस हो, तो सीरियस होना ही नहीं चाहते, कहते कोई फनी नहीं। अच्छा मजाक कहाँ पे आता है, जहां पे वो मजाक कर करके कुछ बता रहे हैं बड़े लाइट मोड में, उन्हीं उन्हीं स्कॉलर्स को सुनने की भी लोग ज्यादा चाहत रखते हैं, कोई फन तो होना चाहिए ना बीच में, एंटरटेनमेंट के इतने आदी हो गए कि, यानी वो भी ऐसे है जैसे कोई हम कोई एंटरटेनमेंट लेने जा रहे हैं, हिदायत के लिए नहीं जाते, एंटरटेनमेंट के लिए, चलो थोड़ा हंसी लेंगे दीन के नाम पे, तो ये कोई हंसी मजाक की चीज नहीं है, बहुत सीरियस काम है, हिदायत है, गाइडेंस, गाइडेंस किस लिए ली जाती है, ताकि आप उस रास्ते के ऊपर चलें जो सीधा है। आप गाइड लेते हैं ना कोई, आप किसी मुल्क में गए हैं, किसी शहर में गए, आप वहां पे गाइड हायर करते हैं, क्यों, इसलिए क्योंकि हमें इस शहर का नहीं पता, तो ये गाइड हमें ले लेके जाएगा, फिर आएगा घुमाएगा। इस दुनिया में भी इंसान को खुद नहीं पता कैसे चलना है, क्या रास्ता सीधा है, तो अल्लाह ताला ने उसकी हिदायत का इंतजाम कर दिया, उसके लिए गाइड बना के भेज दिए कुरान। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि मैं तो खुद ही इतनी माहिर हूं, मुझे गाइड की जरूरत ही नहीं, फिर क्या होगा उनका हाल जो इससे गाइडेंस लेना ही नहीं चाहते। सोचे फिर कि वो किधर जाके एंड अप होंगे। तो इसका मकसद तो हिदायत लेना है, और क्या आप ऐसा गाइड कभी हायर करते हैं कि जो फ्रेंच बोल रहा हो, आपको फ्रेंच आती ना हो। आप वो ही गाइड हायर करते हैं जिसकी आपको समझ आ सके। इस कुरान को भी समझना जरूरी है, तभी इससे हिदायत का काम लिया जा सकता है। अगर इसकी समझ ना आई तो हिदायत तो नहीं मिल सकती। हाँ, सवाब जरूर मिल जाएगा, आप पढ़ते रहें, लेकिन असल इसका मकसद कहीं पूरे कुरान में ये मकसद बयान नहीं किया गया कि इसका मकसद यह है कि आप इससे सवाब लें। हाँ, आपके लिए अजर का बाइस है, जाहिर है, इस पे अमल करेंगे अजर मिलेगा, इसका एक एक हर्फ पढ़ेंगे तो अजर मिलेगा, लेकिन इसका मकसद नहीं ये बयान किया गया कि इसका मकसद है कि आपको बस सवाब ज्यादा ज्यादा मिल जाए। उसके लिए तो फिर कोई एक ही सुभान अल्लाह भी काफी थी, अल्हम्दुलिल्लाह भी काफी थी, उससे भी तो अजर मिलता है ना। अल्लाह अकबर कह लेते उसे भी अजर मिलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते उसे भी अजर मिलता है। अल्लाह ताला को इस कुरान को नाजिल करना, इतने साल इसमें लगे, कितना इसके लिए तमाम किया गया, शैतानों को पीछे किया गया, बड़ी हिफाजत से इसको दुनिया पे उतारा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितना मुश्किल था इसको लेना, ये कौलन थकीला इसको कहा गया, भारी कलाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेते हुए क्या हालत हो जाती थी, ये इतनी सारी चीजों से गुजरने की क्या जरूरत थी अगर आपको इसकी जरूरत ही नहीं थी। आप खुद ही अपनी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजार सकते हैं इसके बगैर, तो फिर जरूरत क्या थी इतने तमाम की। कई कई सूरतों के साथ इतने फरिश्ते उतरे जो उन सूरतों को लेके उतर रहे थे, जैसे सूरह अनाम है, कितने फरिश्ते उसके साथ उतरे, कितना प्रोटोकॉल अल्लाह ताला ने दिया, लोहे महफूज से आसमाने दुनिया पे उतारा, आसमाने दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता करके उतारा। भाई खुद बताइए इसका क्या जरूरत थी फिर, अगर मैं और आप इसके बगैर ही अच्छे थे, और हम समझते हैं इसके बगैर ही हमारी जिंदगी कंप्लीट है, और ये और आके क्या इजाफा करेगा, कुछ सोचे तो सही। ये इतना इतमाम करना, फिर सीना बसीना, आगे से आगे ये मुंतकिल होना, फिर अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमा रहा है कयामत तक के लिए, वो हिफाजत कोई कीमती चीज की जाती है, ये इतना कीमती अल्लाह का कलाम है, उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने ले लिया, इसकी भी क्या जरूरत थी अगर हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, अगर इसकी कोई ऐसी हमारे एहतियाज नहीं है, हम कोई मोहताज नहीं है इसको इससे गाइडेंस लेने की, तो क्या जरूरत थी, इसका जवाब बताए ना। हम तो ये समझते हैं हम इसके बगैर भी काफी हैं, कितने लोग हैं मुझे बताएं, अपने आप को हम मुसलमान भी कहते हैं, कितने ही लोग हैं जो कब्रों तक पहुंच गए लेकिन इससे हिदायत लेना गवारा नहीं किया, कितने ही लोग हैं बस ऐसे ही, ये तो फालतू ही चीज है। और आज हम भी अंधे बने पड़े, उतनी अहमियत नहीं देते इसको, और ना सीने से लगा के रखते। इसके साथ गुजरने वाला हर लम्हा हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशकिस्मती का लम्हा लगता, कि ये तो मेरी खुश नसीबी हो गई जो इसके साथ ये वक्त गुजर गया, लेकिन नहीं ऐसा होता, ना हमने इसको हिदायत समझा, ना इसको अपने लिए इम्पोर्टेंट समझा, ना इसके तरफ आने को हमने कोई अहमियत दी, ना इसके साथ वक्त गुजारने को हमने कुछ अहम जाना, भाई से खैर जाना। वल्लदीन कफरू भी आयाति रब्बिहिम लहुम आदाबुम मिर रिज्जिन अलीम, ये हिदायत है। और वो लोग जिन्होंने इनकार किया आयात का अपने रब की, जो आयात का इनकार करते रहे, कभी मजाक उड़ा के, कभी इसको हकीर समझ के, कभी इसको गैर अहम समझ के, ये तो हिदायत है, ये तो रहनुमाई है, लेकिन उन्होंने इसको कुछ भी नहीं समझा, इसका इनकार ही कर दिया। उनके लिए अजाब है मेरे रिज़िन अलीम, उन अजाबों में से अजाब है जो बड़े दर्दनाक हैं, जो बड़े कपकपा देने वाले, दर्दनाक किस्म के, अलमनाक किस्म के अजाब है, उससे उनको दो चार होना पड़ेगा। जो अल्लाह की नसीहत से मुंह मोड़ता है और उसको अपने लिए अहम नहीं जानता और उसको पसे पुश्त डाल देता है, फिर ऐसे बनी इसराइल का भी आप अंजाम देख ले। अल्लाह ताला ने उनसे गिला किया, उनका गिला इस कुरान में है कि उन्होंने पसे पुश्त डाल दिया अल्लाह के कलाम को, ऐसे जैसे वो उसको जानते ही नहीं थे। और आज हमारा भी कुछ यही हाल है, हमने पसे पुश्त डाल दिया। वैसे उसकी तरफ पीठ ना करें बेशक, लेकिन पसे पुश्त डाल दिया इस तरह से कि उसकी तरफ देखना ही गवारा नहीं है। और बहुत कमाल कर देते हैं हम, जबकि हम एक दफा पढ़ के उसकी पार्टी कर लेते हैं, बच्चों की भी पार्टी कर देते हैं। खत्म हो गया इसका कुरान, जैसे बड़ा हमने कारनामा कर दिया, बहुत सर से उतार दिया, पार्टी हो गई खत्मे कुरान की, और बस दैट्स इट, अब बंद हो गया। ये बंद होने के लिए तो ना आया था। और जो एक दफा कोर्स कर लें उनका तो माशाल्लाह क्या ही कहने हैं, वो तो समझते हैं अब हम क्या बड़ी चीज बन गए, अब वापिस इसी तरफ आने की क्या जरूरत है, बस पढ़ लिया ना एक दफा कुरान, इतनी अहमियत थी। इसीलिए फिर ऐसे लोगों की जो कुफर करते हैं इसका, जो कि ईमान नहीं लाते इसके ऊपर, जो इससे हिदायत का सामान नहीं लेते, उनके लिए देखें कितने बड़े अजाब की वईद दी गई यहाँ पे। तो चौथी दफा मुसलसल कुरान करीम के साथ जो लोगों का रवैया है ना, उसके ऊपर अजाब की वईद आई। कहीं ये अजाब मुहीन, अजाब अलीम, अजाब अजीम, कहीं अजाब में रिज़्ज़ अलीम। और फिर कितनी और हमें बात समझ आएगी, कौन सी बात हमें बताएगी कि ये कुरान अहम है, और किस तरह हमें समझ में आएगा। इन आयात को पढ़ के भी नहीं समझ आता, इसका मकसद क्या, मेरा इसके साथ रवैया क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको छोड़ के जिंदगी गुजारती हूं तो क्या है, अगर मैं इसको अहमियत नहीं देती तो फिर क्या होगा। बार बार अजाब की बात भी हमें नहीं जगाती, अजाब का सबब क्या है। आप पीएचडी कर लेते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं आप, बड़े साइंसदान हैं आप, और बस अपने आप को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि बस अब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। हमें क्या जरूरत है, हम तो पहले ही बहुत बड़े पढ़े लिखे और इतने समझदार हैं, हम इंटेलेक्चुअल्स हैं। सोचें फिर, जो अपनी समझ अपनी अकल को सबसे बड़ी चीज समझ ले, क्या ये तकब्बुर नहीं है इस कुरान के मुकाबले में। तो इसमें मैसेज है हम सबके लिए, हमने जुबानों से इसके ऊपर ईमान का इकरार किया है, लेकिन हमारी जिंदगी में एक रमक भी नजर नहीं आती कि जो हम इस कुरान को कोई अहमियत दे रहे हैं। और हमारी जिंदगी में सबसे पहले जो चीज हमारे हाथ से जाती है वो ये कुरान है। सब काम चल रहे होंगे लेकिन ये कुरान ही है जिसको ही पीछे कर देंगे, क्योंकि सबसे फालतू यही था ना शायद जिंदगी में, एक्स्ट्रा चीज थी ना, एक्स्ट्रा चीज को हम पीछे कर देते हैं। देखिए हम अपने आम जिंदगी में भी, जब हम बहुत मसरूफ हो जाते हैं तो जो कोई एक्स्ट्रा चीज होती है उसको हम कहते हैं चलो इसको तो बाद की बात है, बाकी जरूरी जरूरी काम कर ले, ये तो एक्स्ट्रा ही है। आप देख लें, अभी मुझे एक जीपीएल ने बताया कि लोग चले जाते हैं वेकेशन पे और दो दो तीन तीन महीने वेकेशन पे रहते हैं और फिर ना क्लास लेते हैं ना ग्रुप्स अटेंड करते हैं। क्यों, 3 महीने वेकेशन पे हम जब गए तो सारी चीजें तो हमारी चल रही थी, बल्कि शॉपिंग जरा ज्यादा ही हो जाती है और सैर तफरी भी ज्यादा हो जाती है, लेकिन कुरान ही फालतू था जिसको छोड़ दिया। चलो माना कोई हफ्ते के लिए गया था, कोई 4 दिन के लिए गया था, वो एक अलग समझ आती है बात, दो दो तीन तीन महीने जाके बैठे हुए कहीं और फिर बस कुरान को छोड़ दिया, ये नहीं हम कर सकते। तो हम सब एक दफा जायजा लें हमारी जिंदगियों में कुरान की क्या अहमियत है, कितनी हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, कितना हम इसको सीने से लगाते हैं, क्या हमारे रवैये हैं इसके साथ। चाहे हम इसको पढ़ भी रहे हैं सीख भी रहे हैं, क्यों पढ़ और सीख रहे हैं, क्या चाहते हैं इससे, हिदायत ही चाहते हैं या सर्टिफिकेट चाहते हैं, हाईएस्ट मार्क्स चाहते हैं या जन्नत की तरफ का रास्ता पाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? इसको पढ़ने के बाद हम सुनी अनसुनी कर देते हैं, बंद किया कुरान और उठ के चल पड़े, या वो बातें हमारे दिल को लग जाती हैं, दिल में बैठ जाती हैं, दिल में जगह बना लेती हैं। हम कुराने पाक को सुनने के बाद अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं या नहीं? अपनी अक्ल को एक तरफ रखते हैं कि नहीं? हमारे क्या रवैये हैं? पढ़ने के बाद क्या है? जो नहीं पढ़ते उनका भी हाल पता है, और जो पढ़ रहे हैं वो भी देख लें अपने आप को इन आयात के आईने में। ये उन्हीं की बात आ रही है कि जो सुन के अनसुनी कर देते जैसे कभी सुना ही नहीं। ऐसे जो कुराने करीम के तालिबे इल्म अपने आप को कहलाएं, फिर जब आप उनको कहीं बाहर देखें तो आप परेशान हो जाएं कि कभी इन्होंने कुरान पढ़ा भी है, ये वही लोग हैं क्या? आप उनके रवैये देखें, उनके मामलात देखें, उनके हाल हुलिये देखें, उनके शादी ब्याह देखें, तो परेशानी हो जाए। कभी इन्होंने सुना था, या ऐसा लगता है कभी सुना ही नहीं। उनके सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस देखें, कोई फर्क नहीं लग रहा कि इसने पढ़ा और जिसने नहीं पढ़ा। तो जिसने पढ़ा है फिर उसका पढ़ना भी ना पढ़ने वाले के बराबर ही हुआ ना, वो ना सुनने वाले के बराबर हुआ ना। तो फिर यही मिसाल है जो ये पहली आयत के अंदर आई, कि जो लोग नंबर 8 आयत के अंदर, कि जो लोग सुन के इनके सामने तिलावत की जाती है फिर भी वैसे की वैसे। तो ये आयतें अपने सामने रखें और इनको आईना समझे। मैं इनमें अपने आप को देखूं, अपना जायजा लूं, और फिर अब खुद फैसला करूं कुरान करीम के साथ मेरा क्या रवैया। क्योंकि जब हम एक कोई क्लास में एज अ स्टूडेंट रजिस्टर कर लेते हैं ना, हम समझते हैं बस सारा दीन हमने, बस अब 3 में हम तो कामिल हो गए, हमने सब कुछ कर लिया, अब तो हम बिल्कुल मुकम्मल है, अब तो कुछ रह ही नहीं गया करने को। बस बहुत बड़े हमने कारनामे सर अंजाम दे दिए, ग्रेजुएट भी कर लिया तो उससे भी बड़े कहीं पेडिस्टल पे अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। लेकिन ये आयात हमें आईना दिखा रही है। ये तो हिदायत का पैगाम है। हिदायत भी ली थी इससे या सिर्फ याद ही की है तर्जुमे? हिदायत का पैगाम भी समझा था इसको? अल्लाहु अकबर। अल्लाहुल्लज़ी सख़र लकुमुल बहरा। अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने मुसख़र कर दिया। मुसख़र करना क्या होता है? पहले भी मैंने आपको बताया, मुसख़र करना होता है मुती कर देना, आसान कर देना, खिदमत में लगा देना, कंट्रोल में दे देना, ये सारे इसके माने। तो समुंदर हमारे कंट्रोल में तो नहीं, लेकिन मतलब यानी क्या है यहाँ पे, कि हमारी खिदमत में लगा दिए। अल्लाह ताला ने समंदरों को खिदमत में लगा दिया, लितजरी अलफुल्क फी ही भी अमरी, अके चले कश्तियां उसके हुक्म से। और किस लिए इनको खिदमत में लगाया? वाली तब तहु मिन फदली, और ताकि तुम तलाश करो उसके फजल में से, यानी आप उसमें से रोजी वगैरह, तिजारत वगैरह अपनी करो, इधर से उधर चीजें जा रही हैं। बल्कि अब तो जहाज आए, उससे पहले तो जब जहाज नहीं थे तो आज तक इंसानियत किससे जाती थी? कश्तियों से ही तो जाती थी। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से तो कश्तियां ही चल रही, कहीं इधर से उधर जाना होता था कि कैसे लोग शिप्स के अंदर जाते थे, हज वगैरह पे भी बताते हैं लोग कि 6-6 महीने लग जाते थे शिप्स के अंदर जाया करते थे। तो इस तरह से फासले तय होते थे, और आज भी जहाजों में तो इंसान ही जाते हैं, ज्यादा कार्गो तो कम ही होते हैं जहाज। सारा आपका कार्गो, जितनी आपकी ट्रेडिंग इस दुनिया में इस वक्त चल रही है ना, वो सारी शिप से होती है। इवन जब ये कोविड आया तो आपको पता है कि कई ये जो मुल्क हैं जहां से बहुत सामान आता है, जैसे चाइना वगैरह, वहां पे चूंकि ज्यादा था और ये शिप्स के ऊपर लोडिंग होती थी, और ये सब जब बंद हुआ तो चीजें आनी बंद हो गई, शेल्व्स खाली होने शुरू हो गए। अब देखिए, अगर ये समंदरों का ये निजाम ना हो, ये जो अल्लाह ताला ने रखा है कि आप अपनी ट्रेडिंग के लिए कश्तियां चला सकते हैं, शिप्स चल सकते हैं, अगर ये ना होता, अल्लाह ताला ने इस समंदर को, इस पानी को, इस लॉ में ना बांधा होता, तो ये तो इतना दियो हैकल है, इतना तो निकल जाता है, ये तो बड़े बड़े जहाजों को निकल जाता है। अल्लाह ताला ये निशानियां भी दिखाता है, ना चल सकते जहाज आप कैसे चीजें लाते, कैसे सफर करते, सारी दुनिया की इंडस्ट्री बंद हो जाती। आप सोचें जरा थोड़ी देर के लिए, आपको एक झलक सिर्फ उस कोविड में नजर आई है, कैसे अगर जहाज नहीं चल रहे थे तो कैसे हमारे पास आम चीजें जो हम कुछ भी नहीं समझते वो गायब हो गई, पता चला आ ही नहीं रही। तो अगर अल्लाह ताला ऐसा समंदरों को बना देता, जैसे आप देखें ना पानी तो नरम है ना, आप पानी में उंगली डालें आपकी पानी में उंगली चली जाएगी, यानी ऐसा नहीं है कि कोई सख्त चीज है जिसके ऊपर इतने भारी जहाज चल रहे हैं। इतना नरम है पानी, तो नरम है, नाजुक है, लेकिन उसके ऊपर इतने भारी जहाज चलते जा रहे हैं, अंदर गर्क नहीं हो रहे, डूब नहीं रहे, सोचते नहीं है ये अल्लाह ताला ने इस समंदर को खिदमत में लगाया है तो चल रहे हैं। हम कभी ना कभी किसी फेरी में, क्रूज में, कई लोग अपने जॉब्स के लिए जाते हैं बोट्स या फेरीज के अंदर जाते हैं, कभी सोचते नहीं है ये को ये चल रहा है कैसे, इस नरमो नाजुक पानी के ऊपर अल्लाह ताला इसको चला रहा है। ये तुम अल्लाह का फजल तलाश करो, इसमें कोई हरज नहीं है, तुम्हारी कश्तियां इसमें चलें अल्लाह के हुक्म से, तुम चलाओ कोई हरज नहीं, लेकिन ये इसलिए है कि लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। तुम्हें अल्लाह ताला रोकता नहीं है, तिजारत करने से नहीं रोका गया, बल्कि कहा गया कि तुम तलाश करो अल्लाह का फजल, ये कोई बुरी बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, मुबाह चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई, इंसानों के लिए बनाई, लकुम तुम्हारे लिए, तो इसको भी गलत समझना ये भी इसके खिलाफ है। अल्लाह ताला ने ये बनाई है आपके लिए, अल्लाह ताला ने जैसे ये जो हलाल जानवर है इनको खाना तुम्हारे लिए बनाया कि तुम इनको खा सकते हो, कोई इसमें गुनाह नहीं है। कुछ लोग इसको गुनाह समझ लेते हैं, आप इतना जुल्म करते हैं जानवरों के ऊपर, कई लोग इसको बुरा समझ लेंगे, ये तिजारत करना, ये करना, बस अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, ये कमाइयां और ये करनी, ये तो बस दुनिया में पड़ गए। नहीं, अल्लाह ताला कहता है मेरा फसल तलाश करो, कश्तियां चल रही हैं, जाएं अल्लाह की कुदरतों को देखें, लेकिन ये साथ फरमाए शुक्र अदा करो। और शुक्र मैंने कितनी दफा आपको बताया, शुक्र तभी है जब इंसान इस चीज को समझे दिल से कि अल्लाह तेरा कितना करम है, ये तेरा ही फजल है, और फिर जुबान से भी शुक्र के कलिमात को अदा करे, और फिर इस चीज को समझे और अपने जवारे से भी, अपने अमल से भी इंसान दिखाए कि मैं कितना शुक्र गुजार हूं अल्लाह, मैं तेरे आगे झुका हूं, तूने मुझे ये सब कुछ दिया है। जब दिल के अंदर शुक्रगुजारी आती है तो जरूर इंसान झुकता है। ठीक है, याद रखें इंसान की फितरत के अंदर है, वो अपने मोहसिन के सामने झुकता है, जहां से उसको लगता है कि मुझे यहाँ से फायदा मिलता है, यहाँ से मुझे कोई बड़ी नेमतें मिल रही हैं, बड़ी अच्छी चीजें मिल रही हैं, उसके आगे वो झुकना शुरू कर देते। अब जो समझते हैं कि ये पीर बाबा हमें देता है, वो उसके आगे जाके झुक जाते हैं, इसीलिए तो झुकते हैं ना। जो समझते हैं ये कब्र वाले हमें देते हैं, फिर वो उसके आगे झुक जाते हैं, जो समझते हैं वो कोई और हमें देता है, फिर वो उसके आगे झुकते हैं, कोई बादशाह यहाँ पे या कोई हुक्मरान दे रहा है, फिर उसके आगे देख के कैसे हाथ बांध के खड़े हो। जो ये समझता है कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये सब नेमतें मिली हैं, उसका दिल अल्लाह के आगे शुक्र से भर जाता है, एहसान मंदी से भर जाता है, मोहब्बत से भर जाता है, अल्लाह तूने मुझे ये सब कुछ दिया। अल्लाह ताला अपने इनामात को यहाँ पे गिनवा रहा है, आयत 12 से 15 तक, कि बंदे सोचे तो सही, फिर जब वो ये सोचेंगे ना, उनके दिल में इतनी अल्लाह की मोहब्बत आएगी, इतनी शुक्रगुजारी आएगी, अल्लाह तू मेरा मोहसिन है, अल्लाह तूने मेरे ऊपर ये एहसान किया है, मैं तो ये नहीं कर सकता था, कौन था जो समंदरों को, इतनी बड़ी भला किस्म की चीज है, उसको कंट्रोल कर लेता, कौन था जो उसको साहिलों पर रोक देता, वो मीलों से चलता आता है, ओशंस कितने बड़े हैं, 2/3 इस जमीन के ऊपर पानी है, वो 2/3 पानी पूरा भी तो पानी हो सकता था, वो समंदर चढ़ दौड़े जमीन के ऊपर, कौन उनको रोक के खड़ा हुआ, किसने उनको वहां पे कह दिया ये तुम्हारी हद है, इससे आगे नहीं आना। देखते ना आप जब सुनामी आती है तो फिर कैसी तबाही होती है, अल्लाह ताला दिखाता है, अल्लाह चाहे तो इसी तरह तुम्हारे ऊपर चढ़ना है। ऐसे ऐसी देखे चीजें कि सुनामी आई और वो इतनी बड़ी वेव्स थी कि घरों के घर वो उन्होंने अपनी लपेट में ले लिए, अल्लाह अकबर, तो तुम्हारा दिल शुक्र से अल्लाह ताला के आगे झुक जाना चाहिए, और जितना शुक्र दिल के अंदर होगा ना, उतना इंसान अल्लाह ताला का फरमाबरदार होता है। जितना कोई ना शुक्र होता है उतना ही नाफरमानी करता। जब आपको पता होगा ना, यहां से ही मुझे मिलता है, इसने रोक लिया तो सब गया, मुझे मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, उतना ही फिर आप उस हस्ती के सामने झुकेंगे कि नहीं झुकेंगे? क्या उसको नाराज करना अफोर्ड कर सकते? नहीं, कभी भी नहीं। और फिर इसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए कि वसखर अलकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअ मिन्हु, और मुसखर कर दिए उसने, खिदमत में लगा दिया उसने, जो कुछ आसमान में है, जो कुछ जमीन में है, जमीअन सब का साथ, मिन्हु उसकी तरफ से, उसने अपनी तरफ से ये किया, उससे नहीं है। हम इसी से वादतुल वजूद वाले के ये सारा कुछ अल्लाह से ही है, ये सारा उसका, नाउज बिल्ला उसका हिस्सा है, नहीं, हम ये कहते हैं अल्लाह की तरफ से है। नहीं, ये सब कुछ उसने तुम्हारी खिदमत में लगाए, सब का सब। वमा बिकुम मिन नियमतिन फमिन अल्लाह, अल्लाह ताला ने सूरह नहल में फरमाया, जो कुछ भी तुम्हारे पास नेमतों में से है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, उसका एहसान है। तो इंसान देखे अपनी एक एक चीज को, एक नाखून को भी देखे, एक बाल को भी देखे, तो भी अल्लाह ताला तेरा एहसान है। जितनी चीजों से मैं फायदा उठा रही हूँ अल्लाह तेरा एहसान है, चूल्हे में आग भी जला रही हूँ तो अल्लाह तेरा एहसान है, ऊपर कुछ उठा के रख रही हूँ तो अल्लाह तेरा एहसान है, जिसम चल रहा है तो वहां पर रख रही, ये तुम्हारे फायदे के लिए अल्लाह ताला ने सब चीजें बना दी, सब चीजें लगा दी। चाहे कोई जानवर है ना, आपको लगता है इसका क्या फायदा, उसका डायरेक्टली नहीं भी होगा अगर, तो इनडायरेक्टली वो आपको कहीं ना कहीं से फायदा पहुंचा रहा है। कुछ भी बेकार नहीं कुदरत के कारखाने में, चाहे वो आप कहेंगे कि चूंटी है, लो जी इसका क्या काम है, इसके हमारे लिए क्या करती है, नहीं, वो भी आपके काम में अल्लाह ताला ने लगाई हुई है किसी ना किसी तरह से। और हर चीज को अल्लाह ताला ने बता दिया ना, जैसे अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में भी फरमाया, वल्लज़ी खलकलकुम मा फिल अर्दी जमीया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तखलीक दी, तुम्हारे लिए पैदा किया हर चीज को जो भी है। अब आसमान पे क्या है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, हवाएं चल रही हैं, बारिश उतर रही है, जमीन पे क्या है, कितना कुछ है। इन्ना फी ज़ालिक लआयात लिक़ौमिन यतफक्करून, गौर व फिक्र तो करो, एक एक चीज को सोचो तो तुम्हें इसके अंदर निशानियां नजर आएंगी। अल्लाह अकबर, बार बार नहीं हमें मैसेज दिया जा रहा, सोचो, तौहीद का मैसेज, अल्लाह ताला की पहचान इससे करो, उसकी जो मोहब्बत तुम्हारे लिए है वो पहचानो। अल्लाह ताला ने तुम्हें कितना कुछ अता फरमाया, तुम्हारा मालिक कौन है, तुम्हारा खालिक कौन है, उसको जानो इन सब चीजों से, क्योंकि तुम उसको नहीं देख सकते मगर उसकी बनाई हुई चीज से उसको पहचान सकते हो। आप एक पेंटिंग भी देखते हैं तो आप उससे भी पहचान जाते हैं, वाकई ये जिसने ये पेंटिंग बनाई है ना, वाकई कितना जबरदस्त मुसव्विर है वो, कितना कारीगर है, वाकई उसकी समझ बूझ कैसी है, उसका रंगों का इंतखाब कैसा है, क्या बात है उसकी, आप कितने इंप्रेस होते हैं। आप ऐसी एग्जीबिशंस देखने जाते हैं जहाँ पे पेंटिंग्स लगी हों और आप उसकी कितनी तारीफ करते हैं, अल्लाह ताला ने तो सारी कायनात पेंट करके आपके सामने रख दी, चीजों के रंग देखो, उनकी साख्त देखो, उनके साइजेस देखो, वो कैसे हैं, वो नहीं समझ आती तो अल्लाह की आयात पढ़ दो, पढ़ लो तो ये भी तुम्हें दावत दे रही है गौर व फिक्र की। आज तक अगर नहीं गौर व फिक्र की समझ आई थी तो अल्लाह ताला की आयात पढ़ के तो समझ आनी चाहिए कि ये तो मैंने वाकई इस तरफ तो कभी सोचा नहीं, चलो अभी गौर फिक्र कर लो, यही सब अल्लाह की रहमतें हैं तुम्हारे ऊपर, उसकी नेमतें महसूस करें ना, इनको इनको महसूस करेंगे तो आपको अल्लाह ताला पे इतना प्यार आएगा, इतनी मोहब्बत के दिल मोहब्बत से भर जाएगा। बस चीजों की तारीफें ना करते रहें सिर्फ, ये कितनी खूबसूरत, अरे शहर की बड़ा मजा आया, हम क्रूज पे गए थे बड़ा मजा आया, मजा तो ले लिया, शुक्र कितना किया, मजा तो ले लिया, पहचान कितनी आई उस मालिक की जिसने उस क्रूज को चलाया, जिसने आपको सेफली पहुंचाया, सेफली वापस लेके आया। चलो आप क्रूज पे नहीं गए कभी, चलो अपने जिस्म को ही देख लो, इस सेहत को ही देख लो, बीमार पड़ते हैं, जिस चीज में खराबी आती है तब पता चलता है ये कितनी बड़ी नेमत। किसी ने शेयर किया कि उसके लिम्फ नोड निकाल दिए गए कैंसर की वजह से, तो उसने कहा मुझे उसकी वजह से ये तकलीफें शुरू हो गई हैं, ऐसे ऐसे हो, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि उन्होंने वो निकाल दिए। सुभान अल्लाह, मैंने कहा इसकी भी देखो कितनी अहमियत, कि वो निकालने से इसको कितनी परेशानी हो गई। हम सोचते हैं कि ये चीज फालतू है, इसका क्या इतना काम है, ये इतनी अहम नहीं है, लेकिन सुभान अल्लाह गौर करो तो उसके अंदर भी अहमियत है, उसके अंदर भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी कुदरत और उसकी शान, और उसके पता चलता है कि हर चीज बामकसद बना दी उसने, उसके हर काम बामकसद। अगर इससे भी रब ना मिले तो फिर कहां से पाओगे, फिर अंधे ही हो तुम और क्या हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना, आंखें अंधी नहीं होती, आंखें अंधी नहीं होती, सारे सबके पास आंखें हैं, कोई इस दुनिया में कोई ही होगा जो अंधा होगा, सारों के पास आंखें, आंखें लिए फिर रहे हैं ना, गाड़ियां चल रही हैं, पैदल जा रहे हैं, बाहर देखे कितनी दुनिया, हसल बसल, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, सबके पास आंखें हैं, लेकिन आंखें अंधी नहीं होती, ये दिल अंधे होते हैं जो सीनों में, वाकई दिल ही अंधे हो चुके, जो देखते ही नहीं, समझते ही नहीं, सोचते ही नहीं, इतना कुछ इस्तेमाल करते हैं सारे दिन में। वो सोते हुए भी तुम नेमतों के अंदर हो, तुम सोते भी हो तो नेमतें खत्म नहीं होती, नेमतों का सिलसिला फिर भी चल रहा है, सांस फिर भी चल रही, दिल फिर भी धड़क रहा है, रात की तारीकी फिर भी है, खामोशी फिर भी है, आफियत फिर भी है, लेकिन तुम सोचते नहीं। अल्लाह अकबर। असल में बात यह है कि दौलत हम समझते पैसा है, सिर्फ दौलत, हालांकि हम इतने दौलतमंद हैं ना, क्योंकि हम दौलत को समझे तो सही, ईमान भी दौलत है, सेहत भी दौलत है, ये प्यारे रिश्ते भी दौलत है, ये हमारे इर्द गिर्द जितनी नेमतें फैली हुई है और जितना कुछ हमें मिला हुआ है, ये सारी दौलत है, ये सेहत भी दौलत है, कितना कुछ है हमारे पास। हम सोचते हैं हम दौलतमंद नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, उसके ऊपर रोते हैं, हम तो इतनी दौलत के मालिक हैं। क्या अल्लाह ताला का ये फरमान काफी नहीं कि मैंने तुम्हारी खिदमत में लगा दिया हर चीज को, तुम तो बादशाह हो फिर इस जमीन में, हर चीज तुम्हारी खिदमत में लगी हुई है, कभी एहसास भी किया इस बात का। अल्लाह हू अकबर। आप देख लें, कोई सुबह करता है तो उसको डायलिसिस के लिए जाना है, कोई सुबह करता है तो वो कैंसर में मुबतला है, उसको इसके इलाज की तकलीफ मरहले से गुजरना है, कोई सुबह करता है तो उसके ऊपर बम गिर रहे हैं, उसको पता नहीं अगले लम्हे उसने या उसके प्यारों ने जिंदा रहना है या नहीं, कोई सुबह करता है तो इस हाल में करता है कि वो भूखा है, उसको रात भर नींद नहीं आई इस वजह से कि जो है उस कितने दिन से उसने खाना नहीं खाया। हम इतनी दौलतें रखते हुए फिर भी ना शुक्र करते हैं ना गौर फिक्र करते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं वो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सेहत नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी वो माला माल है, फिर भी उसके पास दौलत है, क्योंकि सूरज उसके लिए चमक रहा है, चांद उसके लिए निकलता है, तारे उसके लिए झिलमिलाते हैं, उसके पास एक नेमत नहीं है लेकिन और कितनी नेमतें उसके इर्द गिर्द बिखरी हैं, उसको भी नजर ही नहीं आते, दिन और रात आ जा रहे हैं, सांस चल रही है, हाँ ईमान की दौलत उसको मिली हुई है, जुबान से अल्लाह का जिक्र होता है, वो तकलीफ में भी अल्लाह को पुकारता है, ये क्या नेमत नहीं है, क्या ये दौलत नहीं है। फिर देखो आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मेदा काम कर रहा है, दौलत नहीं है क्या, पता नहीं हमारे लिए सिर्फ पैसा ही दौलत रह गया, उसके घर के ऊपर बम नहीं गिर रहे, ये दौलत नहीं है क्या, प्यारे रिश्ते करीब हैं, ये दौलत नहीं है क्या। लेकिन असल में ना हम ये सब समझते हैं कि हम सब डिजर्व करते हैं, मुझे मिलना ही चाहिए था, इस वजह से हम शुक्र नहीं अदा करते, मैं डिजर्व करती हूं इस वजह से कि बस मुझे ये मिला है तो मैं पैदा हो गई, पता नहीं मैं क्या कारनामा कर दिया, मुझे ये सब मिलना था, आंख खोलते चुके सूरज चमक रहा, चांद सितारे आसमान खड़ा हुआ है मेरे ऊपर, जमीन हिल नहीं रही, जलजले आ नहीं रहे, समंदर जो है ना वो अपने रफ्तार से चल रहे हैं, दिन और रात चल रहे हैं, ऑक्सीजन मुझे मिल रही है, पानी मुझे मिल रहा है, सब कुछ मेरे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, सर पे वालदैन का साया है, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए, नलाने धुलाने के लिए, गंद साफ करने के लिए, रातों को जागने के लिए, वो नौकरों की तरह मेरे आगे पीछे फिर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि जिन्हें हम डिजर्व ही करते हैं। वो मैं हंसी वो हंसे, मैं रोई तो वो रोए, वो बेचैन रहते थे कि सारी दुनिया की खुशियां मेरे दामन में लाके डाल दें, मैं बीमार हुई तो वो तड़प गए, मैंने ये समझ लिया मैं सब डिजर्व करती हूँ। झरने गिर रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, रंग रंग के चीजें मेरे सामने हैं, फल आ रहे हैं तो रंगा रंग के, फूल खिल रहे हैं तो रंगा रंग के, इतना कुछ मेरे सामने, लेकिन मैंने सबको समझ लिया आई डिजर्व इट, मेरा तो हक था कि मुझे ये मिलता, नहीं तुम्हारा हक नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी खिदमत में लगाया तो तुम्हें मिला, ये कोई है जो करने वाला है, जिसका एहसान था तुम्हारे ऊपर, तो सब कुछ जो जमीन में है हम तो गिन भी नहीं सकते, जमीन पे क्या क्या, सब कुछ जो आसमान है, मा फिस समावात व मा फिल अर्द, जो भी आसमान में, मुझे तो पता भी नहीं आसमान में क्या क्या, मुझे तो पता भी नहीं जमीन में क्या क्या, और जमीन में तो क्या, मुझे तो अपने जिस्म में भी नहीं पता कि क्या क्या चीज चल रही, वो उस रब रहमान ने तखलीक किया मेरे लिए, लेकिन मेरे पास कभी भी फुर्सत नहीं मिली कि मैं इन निशानियों को देखती, तवज्जो करती और उसके आगे झुक जाती। मैंने दुनिया देख ली, सैरें कर ली, डिग्रियां ले ली, मगर मालिक को ना पहचान पाए, ऐसी जिंदगी तो एक मशीन से कम नहीं है, एक मशीन ही बन चुके हूं, बस हर जज्बात और हर किस्म की सोच और गौर व फिक्र और अकल से खाली एक मशीन है जो चल रही है, कुल लिल्लदीन आमनू, कह दीजिए उन लोगों से जो ईमान लाए, या फिर उन लिल्लदीन ला यरजून अय्यामल्लाह, कि वो दरगुजर करें उन लोगों से, किन लोगों से, जो अल्लाह के अय्याम की उम्मीद नहीं रखते, अल्लाह ताला के अय्याम तो सारे ही अल्लाह के ही दिन है, लेकिन खास तौर पे अल्लाह के दिनों से मुराद क्या है, वो दिन जिनमें अल्लाह ताला ने कौमों पर अजाब किया था, अल्लाह ताला का गजब नाजिल हुआ था, अल्लाह ताला ने सफाया कर दिया जिन दिनों में, उन दिनों को कहते हैं अय्यामुल्लाह, आला अल्लाह कौन सी है, अल्लाह ताला की जो नेमते हैं, उसकी जो निशानियां हैं, ये सारी आला अल्लाह है, अल्लाह ताला इन निशानियों से भी अपनी पहचान कराता है, अय्यामुल्लाह से भी अपनी पहचान कराता है, कि उन दिनों को भी याद करो, उन दिनों को देखो जिनमें अल्लाह ताला ने पूरी पूरी कौमें खत्म कर दी, फिरौन और उसका पूरा लश्कर डूब गया, आद पूरे को पूरे सफाया हो गया, कौम लूत पूरी की पूरी खत्म हो गई, समूद पूरे के पूरे खत्म हो गए, तो ए ईमान वालों को आप कह दें, ए ईमान वालों तुम दरगुजर करो इन लोगों से, किन लोगों से, दरगुजर से मतलब क्या है, यानी इनसे इंतकाम ना लो, इनको उनके बातों के ऊपर सब्र करो, इनसे इनकी तकलीफों के आगे बस इग्नोर कर दो, बदला ना लो इनसे, कौन लोग, जो अल्लाह के अय्याम की उम्मीद नहीं रखते, यानी काफिर लोग जिनको कोई खौफ नहीं है कि अल्लाह के अय्याम आए थे, और अल्लाह के अय्याम में अल्लाह तआला ने देखो कैसे मिलिया मीट कर दिया उनको, सफाई हस्ती से मिटा दिया, उससे कोई नसीहत ही नहीं लेते, कैसे अल्लाह तआला ने उनके ऊपर अपना गजब नाजिल किया, उसे डरते ही नहीं है, उनको कोई उम्मीद नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, ये कहीं हम भी ना इसी तरह के हालात से गुजर जाए, कहीं हमारे ऊपर आजाब ना आ जाए, तो हमें ये बताया गया, ईमान वालों को ये बताया गया कि जो जालिम है, जो इस तरह के रवैये रखते हैं, उनके से दरगुजर किया जाए, बाद में मुफस्सिरी ने कहा, बाज ने कहा कि ये आयत मंसूख हो गई, उसके बाद जिहाद का हुक्म आ गया, चूंकि ये मक्की सूरत है, उस वक्त कहा गया था कि आप इनसे दरगुजर करें, उसके बाद तो जिहाद का हुक्म आ गया, तो फिर इनसे लड़ाई का इजाजत मिल गई, लेकिन मक्का में इजाजत नहीं थी। लेकिन बाज ने कहा कि नहीं, ये सबके लिए, कि ये इंसान ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों की बातों में ना आए, ऐसे लोगों से मुतासिर ना हो, उनसे दरगुजर कर दे, उनसे सरफे नजर कर दे, जो कि अल्लाह के अय्याम का वो खुद तो कोई पास रखते नहीं, उनको कोई खौफ नहीं, वो भूले हुए हैं, इस बात को वो भूल गए हैं कि अल्लाह ताला ने कौमों को तबाह कर दिया था, हालांकि वो जानते हैं जो सजाएं आई थी उन कौमों के ऊपर, वो समझते हमें तो कुछ नहीं होना, वो तो उनको पर ही आए थे। अब मक्का में किस कदर मुसलमान मुश्किलों से गुजर रहे थे, तो उनके ऊपर जो सख्तियां आ रही थी, तो उनको दरगुजर करने का हुक्म दिया गया, लियज़ी कौमन, ताकि वो बदला दे एक कौम को। इस कौम से मुराद मुशरिकीन मक्का भी हो सकते हैं, जो जालिम है या जो अय्यामुल्लाह के ऊपर कोई का खौफ नहीं रखते, वो भी हो सकते हैं, और ईमान वाले भी हो सकते हैं। दोनों में हम तर्जुमा देखेंगे कि क्या बनता है और क्या मुराद से क्या माना बनता है, कि ताकि वो बदला दे जालिमों को, बीमा के अनु यकसीबन, जो वो कमाई करते हैं। आज आप इग्नोर कर दें इनको, इनको जाने दें, इनसे दरगुजर करें, लेकिन जो जालिम है, इस पे अल्लाह की कुदरत है, आप आज इग्नोर कर दें, अल्लाह ताला इनसे खुद बदला लेगा, ठीक है, अल्लाह ताला इनसे खुद निपटेगा जो ये कर रहे हैं। और अगर हम कौमन से मतलब ईमान वाले लें, तो ताकि अल्लाह ताला जजा दे उनको, अच्छा बदला दे उनको इस चीज का जो उन्होंने कमाई, यानी ईमान वालों ने जो दरगुजर किया, अल्लाह ताला इसका बदला इनको देगा, ठीक है। तो ये हमें पता चलता है कि अगर माफ कर दिया जाए, तो ये बड़े सबर का काम और बड़े हौसले का काम है, हर एक के अंदर ये हौसला होता नहीं। बेशक इंतकाम लेना जायज है, कि जितना किसी को साथ हुआ उतना वो इंतकाम ले सकता है, लेकिन उससे ज्यादा अफजल क्या है, उससे ज्यादा बड़ी चीज क्या है, हौसले का काम क्या है, कि इंसान दरगुजर कर दे। भाई ये बड़े लोगों का काम होता है। कुछ लोग हर चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं और कभी माफ नहीं करते, उनके दिल बड़े होते ही नहीं, ऊपर ऊपर से अगर कह भी देते हमने माफ कर दे, तो दिल में सारी ये जिंदगी ग्रज पाले रखते, ये कोई अच्छी बात नहीं। इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं अगर माफ कर दूंगा, तो इसका बदला अल्लाह ताला मुझे अता करेगा, तो माफ कर देना हौसले की बात है, अल्लाह ताला उनको अजर देगा। और दूसरे यहाँ पे ये भी कहा गया कि अल्लाह ताला के अय्याम से मुराद जो वो जो अल्लाह की नेमतों को नहीं पाते, और ये भी इसका माना किया जो दुनिया और आखरत की जिंदगी में अल्लाह की मदद के को की उम्मीद नहीं रखते, उनसे अल्लाह ताला खुद बदला लेगा, यानी ये जो जालिम लोग हैं। मन आमिला सालेहन, जो कोई नेक अमल करे, अच्छा अच्छे अमल करे, तो किसके लिए है वो, फली नफसी, तो अपने लिए कर रहा है, अपना ही अच्छा कर रहा है। और जो वमन असा फअलैहा, और जो बुराई करता है, तो वो उसके लिए ही, सुम इला रब्बिकुम तुरजऊन, और तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे, यानी जो नेकी करता है ना, अब जो नेकी करने वाला है वो क्या समझता है, आज हम अगर कोई भलाई कर लेते हैं, कोई अच्छा काम कर लेते हैं, मजा हम कोई पढ़ ही रहे हैं, तो हम क्या समझते हैं, हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, या तो अल्लाह ताला माफ करे, हम समझते हैं कि हमने दीन पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया, कि हम देखो दीन की तरफ आ गए, या पता नहीं अल्लाह माफ करे हमें कहने के ऊपर भी, कि हमने शायद अल्लाह ताला पे बड़ा एहसान कर दिया कि हम नेक बन गए, इसीलिए तो हम कहते हैं मैं तो इतनी नेक थी, मेरे साथ पर ये क्यों हुआ, यानी जैसे कि अल्लाह ताला को तो मैंने तो इतना बड़ा कारनामा कर दिया था दीन पे आके, दीन पे चल के, तो फिर मैं, मेरे साथ तो ये होना ही नहीं चाहिए था। उसको तो मेरे साथ बहुत अच्छा ही मामला करना चाहिए था कि मेरे पास कोई मुसीबत ही ना आती, कोई मसला ना आता। तो हम ये समझते हैं जब हम वो नेकी कर रहे होते हैं, तो अक्सर हमारा ऐसा रवैया होता है जैसे हमने किसी के ऊपर एहसान झाड़ दिया। तो बाज दफा तो दीन के ऊपर समझने लगते हैं, बाज दफा लोगों पे समझने लगते हैं। हम ये कहते हैं कि मैंने ये किया है, मैंने, आपको पता नहीं है कि मैंने कितनी, मैं थकी हुई थी तब भी मैंने आपके लिए टाइम निकाला, मैं थकी हुई थी, मैंने, मेरे पास टाइम नहीं भी था, फिर भी देखो मैंने आपकी हेल्प की। तो ये उसके ऊपर आप एहसान ना जताएं, ये तो आपने अपने साथ भलाई की है। हम कितनी दफा कभी घर वालों के ऊपर कर रहे होते हैं, कभी हम अपने रिश्तेदारों के ऊपर कर रहे होते हैं, कभी हम लोगों के ऊपर कर रहे होते हैं, कभी हम दीन के ऊपर करते हैं। यानी जो हम नेकी करते हैं ना, हमें लगता है हमने बहुत बड़ा एहसान दूसरे पे कर दिया, अब उसको तो मेरा एहसान मानना चाहिए। हालांकि जो आपने भलाई की ना, उसके साथ तो बात की बात है, जो उसको के साथ आपने किया, अपने साथ आपने भलाई की है, वली नफसी, अपने लिए अच्छा किया। तो इस पे तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे तौफीक दे दी कि मैं ये नेकी कर सकी, क्योंकि और अल्लाह ताला तूने मुझसे ये नेकी करवा ली तो आखरत में मुझे पता नहीं किस नेकी की जरूरत पड़ जानी। ए अल्लाह, मैं तो नेकी की मोहताज हूँ, शुक्र है इसके जरिए मुझे मौका मिल गया नेकी करने का, मैंने किसी की हेल्प कर दी तो मेरा एहसान नहीं है उस पे, शुक्र है इसके जरिए अल्लाह ने मुझे नेकी का मौका दे दिया, मैं नेकी कर पाई, मैंने किसी को सदका भी दिया ना, इसके जरिए मुझे मौका मिल गया। क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा लोग अपना सदका ले लेके फिरेंगे, कोई लेने वाला नहीं होगा, फिर कर लेना ये नेकी, फिर किसी को ये इस नेकी का कुछ देना भी चाहेगा वो कहेंगे हमने जरूरत ही नहीं है। हम तो ये नेकी की तौफीक मिल जाना अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी होती है। आपको कहीं मिल रही है ना तौफीक, आपकी किस आप किसी की खिदमत कर रहे हैं, किसी बीमार के साथ ही आप लगे हुए हैं, अब आपको हर वक्त झुंझला, लो जी मैं आपके लिए इतना करती हूँ, सारा दिन मैं भी थक जाती हूँ, मेरे पास कहाँ इतना, हाय मुसीबत, हाय मसला, हाय देखो जरा, ये ना करें, वो शुक्र अदा करें। आपको नेकी की तौफीक मिल गई, अल्लाह ने आपको नेकी करने वाले में बनाया, आप उसकी जगह आप लेटे हो सकते थे, आप ये कर पा रहे हैं, अल्लाह आपसे करा रहा है, आपको इसकी वजह से कितनी नेकियों के आपके अकाउंट में डिपॉजिट होती जा रही है, आपका तो खाता बढ़ता जा रहा है, आपकी तो कमाई होती जा रही है। हम हैं कमाई करें, हम जॉब पे जाएं, ये करें, हम कितना खुश होते हैं कि जो है हमारे, हमें इतने पैसे मिल रहे हैं, देखो कितनी मेरी बड़ी सैलरी मिल रही है, थकावट को भी हम खुशी से वो करते हैं कि देखो भाई इतना पैसा भी तो आ रहा है मेरे पास। लेकिन नेकी करते वक्त हम ऐसा रवैया क्यों होता है जैसे हम एहसान ही झाड़ रहे हैं, जैसे कोई मसला ही पड़ गया, खुश हूं क्योंकि फली नफसी, हमारे अपने लिए है, उस जो बंदा कर रहा है वो अपना भला कर रहा है, और इसी तरह जो बुराई करता है तो बुराई करने के बाद हमारा क्या रवैया होता है, जी फलां की वजह से हो गया, फलां ने मुझसे कराया था, उसने करा लिया, उस ये ना करता तो मैं भी ना ऐसे करती, उसने किया तो मैंने किया है ना, तो वो उसमें भी हमारे कहीं ना कहीं बुराई करके हम किसी और के ऊपर ब्लेम करने की कोशिश करते, बहाने बनाने की कोशिश करते हैं कि असल तो मैं तो बुरी नहीं थी ना, असल तो ये इसकी वजह से, हालांकि वो भी हम अपना बुरा कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं जा रहा, हम, हमें लगता है ना हमने इसके ऊपर इल्जाम डाल दिया या हमने एक्सक्यूज दे दिया कि इसकी वजह से, तो अब मेरे ऊपर से तो मिट्टी गया, मैं तो बेकसूर ही हो गई बेचारी, मैं तो हमेशा ठीक ही होती हूँ, असल में तो ये बुरा इसकी वजह से मैंने बुराई की, ये ना करता तो मैं भी ना करती। तो वो उसका बुरा नहीं कर रहे आप, उसका तो जो बाद में होगा, अपना बुरा कर रहे हैं। इसी तरह कोई किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है तो उसको लग रहा है मैं इसको दबा रहा हूं और मैं इसके ऊपर ज्यादती कर रहा हूं और मैंने इसे ये छीन लिया और मैंने इसका हक मारा तो पता नहीं मेरा कितना अच्छा हो गया, मेरे पास कितनी दौलत आ गई और मैं अच्छी रह गई। नहीं, उसने अपना बुरा कर लिया, उसका तो बात की बात है, जो उसके साथ होगा वो तो बात के, अपना बुरा पहले करता है इंसान, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे, फिर वहां जाके सारा भुगतना पड़ेगा, फिर ना किसी को इल्जाम दे सकेंगे, ना किसी को कह सकेंगे इसकी वजह से, ना ये खुश होंगे कि हाँ देखो मैंने किसी से हक मार के और जो खुद लिया है तो बड़ा अच्छा हो गया, ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, नहीं तुमने अपना खुद बुरा कर लिया। और इसी तरह जो एहसान जताते फिरते हैं वहां पे जाके पता चल जाएगा कि अपना ही भला करते, अपना ही भला कर रहे थे। इसी के साथ वो बात की बात थी, अपने लिए नेकी कमा ली थी। तो ये सोचना चाहिए जब नेकी करें, खुद अपने दिल में सोचा करें ये मैं अपने लिए अच्छा कर रही हूं, ताकि ये बार बार रिवाइज हो। ये ना सोचा करें देखो मैंने इसको कितनी हेल्प कर दी है, मैंने इनको यहां बुला लिया, देखो वहां पे मारे मारे फिरते रहना था इन्होंने, हमने ही इनको बुलाया, हम ना इनके साथ करते ना तो पता चलता इनको। नहीं, आपने उनके साथ जो किया वो तो नसीब, उसको तो मिलना ही था ये, लेकिन जो आपने कर लिया ना वो आपकी नेकी है, उसको प्रिजर्व रखें, उसको एहसान जता के जाया ना कर दे। मैंने इसकी इस काम में इतनी हेल्प कर दी थी, इसकी शादी हमने ही करवाई थी, इसको नौकरी हमने ही दिलवाई थी। तो ये हम सब चीजें अपने लिए अच्छा कर रहे होते हैं। तो अब हम जब भी नेकी करेंगे, कोई भी नेकी का काम, चाहे वो कुरान करीम पढ़ना है, चाहे वो ये क्लास लेना है, देखें जी हम तो क्लास में आ गए, हमने तो उस वक्त भी क्लास ली, हमें तो मुश्किल भी हो रही थी, फिर भी तो कोई नहीं, अपने लिए अच्छा कर रहे थे, किसी पे एहसान नहीं है, ना इदारे के ऊपर, ना टीचर के ऊपर, ना किसी पे। ठीक है, तो फिर सोच लिया करें मैं अपने साथ अच्छा कर रही हूं, फिर दिल मुतमईन हो जाएगा, फिर आसानी भी लगेगी नेकी करने में, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज के लिए आगे बढ़ता है जिसमें वो अपना फायदा देखता है। तो जब पता चलेगा ना कि इसमें मेरा ही फायदा है, तो फिर खुद ही और दिल करेगा नेकी करने का, और अच्छे जज्बे से आप करेंगे। और जब बुराई का कोई मामला हो तो ये सोचे उसका तो मैंने क्या बुरा करना है, उस पर इल्जाम लगा के या उसको हर्ट करके या उसको बातें सुना के या उसको गालियां दे के या उसके साथ बुरा भला करके, उसका नहीं बुरा किया मैंने, अपना बुरा कर लिया। तो फिर माफी की तरफ आएंगे, फिर अपनी इसलाह की तरफ आएंगे। वलकद आतैना बनी इसराइल किताब वल हुक्म वन नबुव्वत, हमने बनी इसराइल को किताब भी दी, हकूमत भी दी, नबुव्वत भी दी। वाकई बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने, आपको जैसे पता है कि बनी इसराइल को हमने इनके बारे में सारा सूरह बकरा में पढ़ चुके कि किताब भी आई, किताब से मुराद इनके पास जो तौरात भी आई, जो इंजील भी आई, जो भी इनके पास अल्लाह ताला का कलाम आया, जितनी भी किताबें इनके पास उतरी हैं वो, और जबूर भी इनमें ही आई, तो ये सब किताबें भी और हकूमत भी दी। आपको पता है सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम कितनी शानदार बादशाहतें थी उनके पास, इसी तरह उस वक्त के जो नबी होते थे वो ही उनके ऊपर हुकूमत करते थे, और नबुवत भी इनके अंदर, कितने नबी इनके अंदर आए, बेशुमार नबी, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जितने नबी आए सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और जाहिर है इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की, तो याकूब अलैहिस्सलाम की आगे औलाद में से बनी इसराइल है, तो जितने नबी आए वो याकूब अलैहिस्सलाम की ही औलाद में से थे। और रज़क़नाहुम मिन तय्यिबात, और हमने उनको रिस्क दिया पाकीज़ा। अब ये एक ऐसी कौम की बात बताई गई है जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने बड़े ही एहसानात किए, बड़े ही, और इतना उनको पाकीज़ा रिस्क दिया कि यानी हत्ता के मैदान ती में जहाँ पे कुछ भी नहीं था वहां पे वो मनोसलवा उनके लिए उतारा, और उनको बादलों का साया दिया अल्लाह ताला ने, चश्मे उनके लिए जारी किए, फद्दलनाहुम आलमीन, उनको फजीलत दी तमाम जहान वालों पे। किस चीज पे फजीलत दी कि तुम्हारे पास ये ऑनरेबल काम है। देखे एक फजीलत दी जाती है ना किसी काम की वजह से, वैसे तो जिस्मानी तौर पे सारे इंसान एक जैसे ही हैं, लेकिन उनको जितना ऑनरेबल काम अल्लाह ताला ने दिया, जिस काम के लिए चुना, उसकी वजह से उनकी फजीलत सारे जहान पे हुई। क्या उनको काम दिया गया था कि अल्लाह ताला के बात को, उसके कलाम को, उसके दीन को दुनिया तक लेके जाना उनका अब काम था। ठीक है, तो पहुंचाना उनका काम था, इस वजह से उनको अल्लाह ताला ने फजीलत दी, और उस जमाने के लिए, उसके बाद लेकिन जब उन्होंने ये काम नहीं किया, उन्होंने इसमें कोताही की और वो कुछ और ही करना शुरू हो गए, और जो जिस तरह की उन्होंने नाफरमानियां की, अल्लाह ताला ने उनसे फजीलत ले ली और फिर उम्मत मुस्लिमा को दे दी। उम्मत मुस्लिमा में भी अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी मेहरबानियां की, ये वो वाला कलाम इनको दिया जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का पैगाम था, और ये इनको जिम्मेदारी दे दी, अब इनको फजीलत दे दी जहान वालों के लिए के ऊपर, कि अब ये मेरे पैगाम को लेके दुनिया में फिरेंगे और इसको पहुंचाएंगे आगे तक। तो अब देख लें कि अल्लाह ताला ने यहां भी ये नहीं फरमाया कि फजीलत इसलिए दी थी कि उनके रंग गोरे थे, फजीलत इसलिए दी थी कि वो फलां इलाके में रहने वाले थे, या बड़े अमीर थे, या उनके खानदान बहुत अच्छे थे, या वो पैगंबरों की औलाद थे। फजीलत किस वजह से दी? इस दीन की वजह से। उस वक्त फजीलत इन्हें से मतलब क्या, अल्लाह ताला की नजर में उस वक्त उनसे ज्यादा कोई महबूब नहीं था, अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया था अपने काम के लिए। आप देख लेना। अच्छा, इसको ऐसे देखें, अब यहाँ पे कोई बादशाह है या सदर, सदर उस मुल्क का है, वो आपको अपनी जॉब के लिए करें, मुंतखब कर ले कि आप उसके ऑफिस में जॉब करेंगे, या प्रेसिडेंट हाउस में या व्हाइट हाउस में आपकी जॉब है। अल्लाह अकबर, इंसान तो इस तरह बिल्कुल ही आप से ही बाहर हो जाए कि हाय मुझे तो कहाँ जॉब मिल गई, वो तो हर एक को बताता। फिर आपको पता है मैं तो प्रेसिडेंट के ऑफिस में जॉब करता हूँ, अब जॉब्स तो और भी हैं, लेकिन क्या उसके मुकाबले ही कोई जॉब होगी? जब वो कितनी फखर से कहता है, तो जो अल्लाह ताला के दीन की जॉब कर रहा है ना, वो अल्लाह की जॉब है, उसकी इससे ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको फजीलत दी, ये नहीं, इसलिए नहीं फजीलत दी थी कि उनके अंदर पैगंबर बहुत अल्लाह ने पैदा किए तो इसलिए उनको बड़ी फजीलत मिल गई, जी वो बड़े अच्छे थे, बड़े खूबसूरत लोग होते थे इसलिए उनको फजीलत दी, ऐसी कोई बात नहीं बताई गई, या बड़ा खानदानी लोग थे, बड़े ऐसे लोग थे, कुछ भी नहीं। फजीलत दीन की वजह से होती है, और अल्लाह ताला ने उनको इस दीन का आगे पहुंचाने वाला बनाया, ये हिदायत की पैगाम आगे लेके चलने वाला, इसकी जिम्मेदारी दी थी, तो फिर उनको फजीलत मिली। तो हम भी अगर ये जिम्मेदारी निभाते हैं तो फजीलत है, अगर नहीं निभाते तो अल्लाह ताला के हाँ कोई अहमियत नहीं है ऐसे लोगों की। सिर्फ यही सोचते ना, हम तो उम्मत मुहम्मदिया के फर्द हैं, बस इसके ऊपर ही हम बस इतने फखर करते रहे हैं बस जी, और हमें क्या चाहिए, अब तो बस हम पार ही पार वहां पे। नहीं, तुम उम्मते मुहम्मदिया के फर्द हो, इसमें तुम्हारा कोई कारनामा नहीं, अल्लाह ताला ने तुम्हें इसमें पैदा कर दिया। तुम्हारी असल फजीलत तब है जब तुम वो जिम्मेदारी निभाओ जिसके लिए अल्लाह ताला ने इस उम्मत को खड़ा किया, और वो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बता दी कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी, कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, ये अल्लाह ताला ने बता दिया। लेकिन कब? जब काम भी कुछ करोगे कि ऐसे ही बेहतरीन हो, सज के घरों में बैठ जाएंगे हम बस बेहतरीन है जी, टाइटल लगा दे बेहतरीन का ताज पहन के, हम बेहतरीन हो गए, काम कुछ भी नहीं करना। अब हमारे लिए मिसाल के तौर पे कितना आसान है, हम ये कुरान के पैगाम को ही आगे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसको ही आगे पहुंचाने के लिए कोशिश करना शुरू करते, उठे तो सही, उठना ही नहीं, दो लोगों का काम होगा हमारा तो नहीं, लेकिन फखर मुझे बहुत रहता है कि मैं उम्मत मुहम्मदिया के फर्द हूं। अब कितनी हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है, हम अपनी देखें ना, इस चीज को छोड़े, सऊदी अरब क्या कर रहा है, फलाना मुल्क क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उनके ऊपर बस हर वक्त ये ही बुरे, ये ही ऐसे। भाई मैं और आप क्या कर रहे हैं, वो जो भी करते हो वो उनके हमसे नहीं सवाल होना, हम क्या कर रहे हैं, मैं भी तो एक फर्द हूं इसी उम्मत मुस्लिमा का, फिर मेरी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है, ये सारी जिम्मेदारियां दूसरों की हैं, तो फिर मैं किस बात पे फख्र करती हूं कि जी मैं इस उम्मत का फर्ज हूं। तो आप एक फर्द हैं, लेकिन उसके बाद आप पे जिम्मेदारी है, जैसे उनके ऊपर अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी थी, नेमतें बहुत दी अल्लाह ताला, नेमतें देने में वो बहुत अता करने वाला है, वो गनी है, वो नेमतों की बारिश कर देता है। कहाँ वो सहराओं में घूम रहे हैं, कहीं मन है, कहीं सलवा है, कहीं चश्मे उनके लिए निकल रहे हैं पानी के, कहीं बादलों के साए, और अल्लाह ताला को बेपरवाह, इसमें बेनियाज है, वो देने में कभी बखील नहीं है, वो बहुत देता है, लेकिन तुम भी तो कुछ करो। अब उसके बाद यही फखर से बैठ जाना, जी हमारे ऊपर देखो कितनी बड़ी ये नेमत हो गई। अब वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई हम तो चुनी हुई कौम है, हम तो बहुत बड़ी चीज है, बस उनका फखर इसी में खत्म नहीं होता था, वो फखर ही करते रहे, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी ना की। आज वही चीज उम्मत मुस्लिमा कर रही, फखर तो बहुत है हमें, लेकिन काम करना वो कुछ भी नहीं, बल्कि पता ही नहीं है कि हमें किसी काम के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, उखरिजत लिन्नास, तुम तो लोगों के लिए निकाले गए हो, तुमने तुम बेहतरीन उम्मत है जो लोगों के लिए निकली है कि उनको अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करें। ये इसका पता ही नहीं कितने लोग हैं जिनको इस जिम्मेदारी का एहसास हो। इस उम्मत मुस्लिमा में कितने लोग ये जानते भी हैं कि हमारे पर कोई जिम्मेदारी है, पता ही नहीं है। तो फजीलत उनसे छीन ली गई थी, और उन्होंने क्या किया था। अब ये हमारे लिए सबके लिए लेसन है। वह आते ही ना हम बय्यिनात मिनल अम्र, और दी हमने उनको वाज़े निशानियां दीन में से। मोजज़ात अल्लाह ताला ने दिए, उनके पास मोजज़ात आए, वाज़े अहकाम आ गए, दलाइल आ गए उनके पास। तो दीन के मामले में अल्लाह ताला ने बिल्कुल क्लियर उनको वाज़े कर दिया, हर चीज खोल खोल के बयान कर दी उनको। लेकिन उनका क्या हाल था, फमख्तलफू इल्ला मिन बादी मा जाअहुमुल इल्म बग़यन बैनहुम, उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया मगर इसके बाद कि उनके पास इल्म आ गया था सरकशी की वजह से आपस में। और ये बहुत दफा ये मजमून कुरान करीम में आया कि लोग इसलिए नहीं इख्तलाफात में पड़े, उम्मतें इसलिए नहीं, पिछली उम्मतें इख्तलाफात में पड़ी कि उन बेचारों को पता ही नहीं था, वो एक ने कुछ कहा दूसरे ने कुछ कहा, बेचारे लॉस्ट ही हो गए, कंफ्यूज ही रहे। नहीं, उनके पास तो क्लियर क्लियर बय्यिनात आई थी ना, क्लियर बातें आ गई थी, वाजे थी हिदायत का रास्ता, फिर भी उन्होंने इख्तलाफ किया, आपस में इख्तलाफ किया। इसके बाद के उनके पास इल्म था, इल्म के जरिए तो हिदायत मिलनी चाहिए थी, शऊर आना चाहिए था, सही और गलत की पहचान होनी चाहिए थी, लेकिन वो इख्तलाफात में पड़ गए, इख्तलाफात में पड़ गए, बग़यन बैनहुम, बग़ी की वजह से आपस में। हर एक अपनी दुकान जब चमकाने में लग जाए कि जी मेरे मेरे पास आ जाए गाहक, जब दीन एक दुकानदारी बन जाए, कारोबार बन जाए, तो फिर यही होता है ना, हर एक ने अपनी दुकान चमकानी है, उधर ना जाओ इधर इधर आओ, ये हमारे पास ये है, हम ही ठीक है, वो तो गलत है, आपस में ही लड़ रहे हैं। देखें, एक तो दीन वाले बेदीनों से उनकी एक कश्मकश चलती है, काफिर और मुसलमान की एक होती है, या दीन वाले और बेदीन की, लेकिन दीन वालों के अपने अंदर कौन सा कोई इत्तेहाद है, वो भी आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे के ऊपर इल्जाम, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, वो गलत वो काफिर वो काफिर, बस ये है, यही रह गया ना आज, किसी तक पैगाम क्या पहुंचाना। आपस के इख्तलाफात खत्म होंगे तो किसी तक बात पहुंचेगी ना, उनकी सारी एनर्जी किस में लग रही, आपस में लड़ने में, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में, या हम इस पे जीत जाएं, बस। क्या आज यही नहीं हो रहा, क्या हमारे पास इल्म है कि नहीं है, क्या वाज़े आयात हैं कि नहीं है, फिर भी इख्तलाफात, क्या वजह है, आपस में सरकशी, ये नहीं कि पता नहीं, बगावत, हमने नहीं मानना, कुरान हदीस आ जाए, बुखारी मुस्लिम सामने खड़ी कर दो, कहते हमने नहीं मानना, हमारे तो इमाम ने ये कहा, हमारे तो फलाने ने ये कहा। हालांकि अगर सोर्स जो रूट है उस तक चले जाएंगे तो सारे इख्तलाफात खत्म हो जाए, लेकिन उस तक आना ही नहीं। इन्ना रब्बका यक़दी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख़्तलिफ़ून। अब दे ज़ाहिरी बात है, जो लोग दुनिया में फैसले नहीं जिनके हो पाएंगे तो क़ियामत के दिन ही होंगे, इन लोगों का फैसला अल्लाह ताला क़ियामत के दिन करेगा जिसमें ये इख्तलाफ करते थे, क्योंकि दुनिया में तो किसी ने भी नहीं मान के ही नहीं देना। और ये तो इल्म को भी लेकर इन्होंने एक दूसरे से मुकाबलेबाजी का ही जरिया बनाया कि बस मैं इससे ऊपर चला जाऊं और मैं इससे ज्यादा आगे बढ़ जाऊं, इससे आगे निकल जाऊं, मैं लोगों में बैठूं तो ज्यादा बड़ा बन के बैठूं कि मुझे बड़ा आता है, बस इसके लिए, या सारा इल्म इसलिए लिया कि लोगों की गलतियों को देखते जाए, वो ऐसे कर रहे हैं, वो फलां ऐसे कर रहे हैं, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, वो देखो ये जाता है, ये वो ऐसे करता है, बस इसके लिए। इल्म के बाद तो आजी आनी चाहिए थी, उलट ही हो गया, इख्तलाफात इख्तलाफात। सुम्मा जालना का आला शरियत मिनल अम्र, फिर लगा दिया हमने आपको, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरीके पे, एक शरियत पे, दीन में से, फत्तबे, आपस पैरवी करें आप इसकी, यानी फिर आप इनकी परवाह ना करें जो आपको आपकी मुखालफत करते हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक शरीयत दे दी, आप बस उसको फॉलो करें, और ये सब के लिए पैगाम है। शरीयत से मुराद दीन भी है, शरीयत में से मुराद जो भी फराइज, जो भी हमारे पर हदूद, जो भी हमारे ये अल्लाह ताला के अहकाम हैं, वो सब इसमें आ गए। आप उस तरीके पे चलें, इस रास्ते को मजबूती से थाम लें। और किसके रास्ते पे ना चलें, वला तत्तबे अहवा अल्लदीन ला यालमून, और ना आप पैरवी करें उन लोगों की ख्वाहिशात की जो इल्म नहीं रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो चलना नहीं था उनके रास्ते पे। हम सब के लिए ये पैगाम है कि हमारा रास्ता कौन सा होना चाहिए, जिसके आगे आगे, इस रास्ते के आगे लीडर कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शरीयत का रास्ता, ये वो है रास्ता जिसको हमने अपनाना है, सिराते मुस्तकीम। वो हमारे आगे आगे गाइड है, हम उनके पीछे पीछे चलते जाएं। उनके पीछे ना चलें जो उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे ना चलें जो इल्म नहीं रखते। और हम कहाँ से गाइडेंस लेते? उन्हीं के पास जाके गाइडेंस लेते हैं जो इल्म नहीं रखते। क्या ऐसा नहीं है? वो लोग जो इस सीधे रास्ते पे नहीं है और जो इसका इल्म ही नहीं रखते, ना इस कुरान का, ना हदीस का, ना दीन के बारे में कुछ जानते, हम उनके रास्ते की पैरवी करने में ज्यादा फख्र महसूस करते हैं, ज्यादा इस चीज को समझते हैं। हालांकि वो जाहिलों का रास्ता है, इल्म वालों का नहीं है। हम जाहिलों के रास्ते पे चलने को हर जगह पे देख लेना, हम अगर राय भी लेते मैं कुरान पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, उस दोस्त से जाके पूछ रहे हैं जिसको खुद भी नहीं कोई इल्म दीन का, वो जिद के मामले में खुद कोरी है, उससे पूछेंगे अच्छा मैं कितना करूं, ये कोर्स करूं कि नहीं करूं। ये एक छोटी सी मिसाल। इसी तरह और चीजों में भी इल्म वाले के पास जाके उससे रहनुमाई लेने की बजाय हम ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हम उन लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर चले जो इल्म ही नहीं रखते। और उनकी ख्वाहिश क्या होगी फिर? वो जाहिर खुद भी भटके में दूसरों को भी भटकाएंगे। यहां से पता चल गया कि इल्म वाले का और बेइल्म का रास्ता फर्क होता है, और उस रास्ते पे हमें नहीं जाना। ऐसे लोगों से मशवरे नहीं लेने, ऐसी लोगों की राय पे नहीं चलना, ऐसी लोगों की ख्वाहिश पे नहीं चलना। वो तो यही ख्वाहिश करेंगे कि आप भी हटें इस जगह से, उनकी ख्वाहिशात तो यही होती हैं, और वो पीछे पड़ जाते हैं। वो फोर्स करते हैं बाज दफा कि आप इसी तरफ को आए जिधर को हम आपको ले जाना चाह रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए भी, और रहती दुनिया तक के लोगों के लिए जो ईमान वाले, उनके लिए एक शरीयत का रास्ता रख दी, उसके ऊपर चलो। बिदात का रास्ता भी तो ख्वाहिश का रास्ता ही है। बिदात जो नए नए तरीके इस्लाम के अंदर ईजाद किए, मैं एक पैरेलल दीन बनाया हुआ, वो भी तो अपनी अकल समझ से, अपनी ख्वाहिश से। बस हमारे बड़े ऐसा करते थे, हमारे तो फलां से करते थे, हमारे तो खानदानों में रिवाज ये था। ये नहीं देखना कि शरीयत क्या है, ये नहीं देखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से क्या रहनुमाई आई इसमें, ना देखना, ना सुनना, ना समझना। बस वो ही करते जाना जो दिल में आ रहा है, उसी को दीन बनाया हुआ है। तो जहां पर ख्वाहिश इंसान की दीन से टकराती हो, तो उस ख्वाहिश को छोड़ दे और अल्लाह के रास्ते की तरफ आए। इन्नहुम लन युग्नू अन्का मिन अल्लाही शैया, बेशक वो नहीं काम आ सकते तुझको अल्लाह से कुछ भी। जो ऐसे लोग हैं जिनकी ख्वाहिशात पे चलना है, जो बेइल्म है खुद, जो खुद इंसान को उलझाते हैं, इधर अपनी तरफ बुलाते हैं, मैं ही सही कह रही हूं तो मेरी बात मानो, चाहे वो कोई शौहर है किसी का, चाहे किसी के बच्चे हैं, चाहे किसी के कोई, वो कोई भी काम नहीं आएंगे अल्लाह ताला के यहाँ कुछ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को और अपनी फुप्पी सफिया को ये फरमा दिया कि मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकता अल्लाह के यहाँ, तो और कौन कोई काम आएगा? ये काम आएंगे जिनके कहने के ऊपर हम उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, वो खुद भी, उनको कुछ इल्म नहीं है, हम बस उनके पीछे चल पड़ते हैं। वो उसने ये कह दिया, वो हमसे ये काम कराना चाहता है, तो हम अंधे बन जाए? अगर हमें पता है ये काम गलत है तो हम क्यों करें? तो ऐसे लोग इंसान को हटा देते हैं अल्लाह के रास्ते से, तो ये लोग काम नहीं आएंगे। वह इन ज़ालिमीन बादुम औलिया उबाद, और जालिम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। जालिम लोग यानी कैसे, जो अल्लाह के रास्ते से हटे नहीं, वो एक दूसरे के साथ चलते हैं, वो ही आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। और मोमिनों का दोस्त कौन है? अल्लाह वलीउल मोमिनीन, मुत्तकीन, अल्लाह दोस्त है मुत्तकी लोगों का। क्योंकि मुत्तकी बाज दफा सोचते हैं कि ये तो आपस के अंदर देखो सब एक है, सारे उस तरफ हो गए, मैं अकेली रह गई, मैं कैसे चलूं। नहीं, नेक जो नेकी के रास्ते पे चलने वाला है, जो मुत्तकी परहेजगार है, जो अल्लाह की खातिर कोई चीज छोड़ता है, वो याद रखे कि अल्लाह ताला उसका दोस्त है, अल्लाह ताला उसको इससे बेहतरीन, ज्यादा बेहतर नेमुल बदल देगा। हाजा बसायर लिन्नासि व हुदन व रहमतुल लिकौमि यूकिनून, ये बसायर हैं, ये रोशन निशानियां हैं, ये बसीरत की बातें हैं, ये कुले दलाइल हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो वाकई यकीन रखने वाली कौम, जो यकीन करना चाहते हैं, उनके लिए इसमें हिदायत भी है, उसमें इसमें रहमत भी है। यानी ये सारे बसायर हैं लिन्नास, ये सारी जो कुरान पाक में जितनी ये बातें हैं, ये सब जो, या जितनी जो बातें अभी कही गई हैं, ये सब आंखें खोलने के लिए काफी हैं। रहमत भी है, हम सब अपने लिए रहमत चाहते हैं, इसी में रहमत है ये इंसान इन चीजों को अपना ले, यही हिदायत का रास्ता है, यही सीधा रास्ता है। अम हसिबल्लदीन अजतराहू सय्यात, ये जो लोग समझते हैं ना कि जिसने कमाई की बुरी बुराइयां कमाई, अन नजालहुम कल्लदीन आमनू आमिलु सालिहात, कि हम उनको वैसा बना देंगे जो ईमान लाए और जिन्होंने साले अमल किए। जो लोग ये समझते हैं कि वो बुरे काम करके कोई बात नहीं, आखिरत में तो सबने एक जगह ही चले जाना, और यहाँ पता नहीं वहां पे कोई भेड़ चाल होनी है, धक्के मार के हम भी जन्नत में एंटर हो जाएंगे, नहीं, या कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, ऐसे लगता है कि आज जैसे हम रह रहे हैं, एक ईमान वाला, एक नेक काम करने वाला, दूसरा है जो बुराइयां करने वाला, एक ही साथ तो रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब खा पी रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं, बल्कि हम तो इनसे ज्यादा बेहतर हैं, तो शायद पता नहीं वहां पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया ये इस्तफा में इनकारी है, असल में ये पूछा नहीं जरा सवाल, क्या ऐसा समझते हो तुम, क्या ऐसा ख्याल करते हैं लोग कि वहां पे ऐसा हो जाएगा, जैसे सूरह कलम में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, अफा नजाल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, तुम समझते हो कि हम जो मुस्लिम है, जो फरमा बरदार है, उनको मुजरिम की तरह कर देंगे, जो गुनाहगार है उनकी तरह। यहाँ पे कहा गया जो गुनाह करने वाले हैं उनको वैसा ही अंजाम मिल जाए वहां जाके, वो भी बस इसी तरह जन्नत में पहुंच जाए, उसी तरह जैसे कि ईमान वाले पहुंच रहे हैं, जैसे साले अमल करने वाले, उनको भी वही दर्जे मिल जाए, उनके लिए भी वही आसानियां हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, कैसे हो सकता है कि दो लोग अलग रास्तों पे चलने वाले हों और उनका अंजाम एक ही हो जाए। मालकुम कैफ तहकुमून, क्या हो गया तुम्हें, तुम कैसे फैसले करते, अम लकुम किताबुन फीहि तदरुसून, तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुमने ये पढ़ा है कि अल्लाह ताला वहां पे सबको इक्वल कर देगा। इन लकुम फीहि लमा तखय्यरून, जो भी तुम चाहो, जो भी इख्तियार करो, बस ठीक है। सवा अम्मा हिया हूं व ममात हूं, बराबर है उनका जीना और उनका मरना, फासिक फाजिर और एक मोमिन की तो जिंदगी में भी फर्क होता है और मौत में भी फर्क होता है। मौत भी उसको लेने के लिए जन्नत के फरिश्ते आते हैं, उस दूसरे को, बुरे को लेने के लिए जहन्नुम के फरिश्ते आते हैं। कब्र में भी दोनों के लिए डिफरेंस है, आखरत में भी दोनों के लिए फर्क फर्क मकामात हैं, हालात फर्क है। दुनिया में आप देख लें, एक ईमान वाले की जिंदगी और एक नाफरमान की जिंदगी में बहुत फर्क होता है। यहां पे ये फर्क है जीने में, तो मरने में भी तो फर्क है। अल्लाह ताला यही फरमाने ना, क्या उनका जीना हम जीना मरना बराबर कर देंगे, दोनों का जीना मरना बराबर हो जाएगा, दोनों की को हम बिल्कुल बराबर कर देंगे, क्या उन्होंने ये समझा? ऐसा नहीं होगा। तो ये जहन से निकाल दें, जब इंसान कभी कभी नेकी करने लगता है ना, तो बड़ा डिसहार्ट होने लगता है, क्या फायदा मुझे हुआ ये करने का, क्या फायदा, देखो लोग इतने मजे कर रहे हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो इतना कमा भी रहे हैं, वो तो उड़ा भी रहे हैं, वो तो बड़े खुश भी हैं, वो तो ऐसे हैं, और मुझे देखो जरा कि मैं कितनी मुश्किल में पड़ी हुई हूँ, मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, कितनी मुशक्कत कर रही हूँ। तो वही बात है, अपना ही भला कर रहे हैं। क्योंकि ये समझ लें कि अगर आज आपको लगता है कि सब बराबर एक जैसा खा पी रहे हैं, एक ही घरों के अंदर रह रहे हैं, या एक ही जगह नौकरियां कर रहे हैं, तो ये ज्यादा देर के लिए नहीं है। जो ही आंख बंद होती है, दोनों के आंख बंद के, अभी आंख बंद भी नहीं होती तो जब फरिश्ते ही लेने आएंगे, दोनों के लिए डिफरेंट बिल्कुल हालात हो जाएंगे। अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत को जाया नहीं करेगा जो उसने अल्लाह की खातिर की हो। एक बंदा देखे रात भर सोया रहता है, खराटे मारता रहता है, फजर पे भी नहीं उठता, दूसरा तो हजूद से उठा हुआ है, मेहनत कर रहा है, फजर पढ़ रहा है, फिर उसके बाद भी तिलावत कर रहा है, दूसरा है वो 10 बजे उठ रहा है। दोनों के एक बराबर हो जाएंगे, कुछ उसको भी ना मिला, उसको भी ना मिला, या इसको जो मिल गया उसको मुफ्त में ही मिल गया, वो सोया पड़ा रहा और बस उसको मुफ्त ही मिलता जा रहा, ऐसा नहीं होगा। क्या तो अल्लाह ताला के यहाँ इंसाफ है, कभी डिसहार्ट ना हो कोई भी नेकी करके, और कभी भी बुराइयां करके दलेर ना हो कि ये सोचेंगे कुछ नहीं फर्क पड़ता, फर्क पड़ेगा, अभी ये नहीं पता चल रहा। ठीक है, फर्क पड़ेगा और पढ़ना है, और अल्लाह ताला का कुरान कहता है कि बस बहुत फर्क है। तो कभी बुराइयों को लाइट ना ले, गुनाहों को लाइट ना ले, क्योंकि शैतान इसी तरह दिखाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अभी कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर तो तुमने जन्नत में ही चले जाना, आखिर तो वहां पे सारा बस अल्लाह गफूर रहीम है, सबको माफी कर देना, क्या फर्क पड़ता है अब तुम्हें अपने आप पे कितना सहने की क्या जरूरत है। नहीं, देखें जीना मरना, उठना बैठना, सोना जागना, रहना सहना, दोनों का जब फर्क है ना, तो ये समझ लो अल्लाह ताला भूलता नहीं है, ये समझ लो कि इग्नोर नहीं हो रहा, ये सब सब चीज एक जर्रे के बराबर भी वहां पे तुल जानी है। तो फिर नेकी करने वाला सुस्ती ना करे और डिसहार्ट ना करो, और बुराई करने वाला बेपरवाह ना हो और इसको मामूली ना समझे। तो दोनों के लिए पैगाम है, सा अमा यहकुमून। अगर तुम ऐसा समझते हो ना कि सवाअन होगा, बराबर है उनका जीना मरना, कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो बड़ा बुरा फैसला कर रहे हो तुम, तो फिर तुम्हें पता ही नहीं है, बड़ी बेवकूफी की बात है ये। एक का अंजाम और दूसरे का अंजाम बहुत डिफरेंट है, ये अल्लाह के यहाँ इम्पॉसिबल है कि बुरा भला एक हो जाए, शायद दुनिया के अंदर शायद कोई इंसान ऐसा सोच सकता हो, यहाँ पे तो ना इंसाफियां भी हो जाती, शायद ऐसा कोई सोच सकता हो, यहाँ पे तो सारे ही एक जैसे, सच्चे झूठा, बल्कि झूठा तो ज्यादा ही अच्छा ही रह गया, सच बोल के क्या मुझे फायदा मिला, बल्कि नेकी करके तो मैं खाम खा बातें ही सुनी, क्या फायदा मुझे उसका हुआ, बल्कि हलाल हलाल की रट लगा के मुझे क्या फायदा मिला, वो हराम खा के नहीं अच्छे रह गए, नहीं ऐसा समझते हो ना, गलत समझते हो। नेकी करके कोई बुरा नहीं बना, आप अच्छे ही रहे, सच बोल के आप अच्छे ही रहे, क्योंकि ये बराबर नहीं हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें इन आयात के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे अकायद को दुरुस्त करे, अल्लाह ताला हमें इस रास्ते पे चलने की तौफीक दे जो नेकी का रास्ता है। अबू जर फरमाते हैं कि मैंने अपने दोस्त को फरमाते सुना, कभी किसी कांटे पे अंगूर नहीं उग सकता, इसी तरह फासिक फाजिर लोग नेक लोगों का मकाम नहीं पा सकते, नेक लोगों का मकाम नेक लोग ही पा सकेंगे, याद रखें ये दोनों बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इसलिए हकीर ना जाने नेकी को, इसके लिए मेहनत करनी पड़े तो कर ले, क्योंकि अगर वो मकाम पाने हैं तो उसके लिए चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, जन्नत बुलंद है, और इसको मामूली ना सोचे कि गुनाह करके कोई फर्क नहीं मुझे पड़ रहा, यहाँ पे शायद नहीं फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा, ना बीमार हो रहे हैं, ना कुछ और मसले मसाइल आ रहे हैं, हम तो बड़े मजे में हैं, गुनाह कर भी रहे हैं, कोई क्या फर्क पड़ रहा है हमें, नहीं फर्क पड़ेगा। तो अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम नेकी में आगे बढ़ सके और गुनाहों से परहेज कर सके। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما السماء وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون